सर्वप्रथम त्रिवर्ग धर्म अर्थ तथा काम ये तीन सिद्धांत आवपतान बोए गए खेत में से पुनः फिर यदि यदि सेवेत स्वीकार करना चाहिए। तान भौतिकवादी क्रियाकलापों को भिक्षु सन्यासी स वह पुरुष वै निस्संदेह वांताशी वमर वमन करके खाने वाला अपत्रपह लज्जा रहित निर्लज। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है वह धर्म अर्थ तथा काम इन तीन भौतिकवादी क्रियाकलापों को सिद्धांतों क्रियाकलापों के सिद्धांतों को छोड़ देता है जिनसे मनुष्य गृहस्थ जीवन में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति पहले संन्यास स्वीकार करता है किंतु उसके पश्चात ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं में लौट आता है वह वांताशी अर्थात अपने ही वमन को ग्रहण करने वाला कहलाता है। निस्संदेह वह निर्लज्ज व्यक्ति है। तात्पर्य समस्त भौतिकवादी क्रियाकलापों का नियमन वर्णाश्रम धर्म संस्थान द्वारा होता है। वर्णाश्रम धर्म के बिना समस्त भौतिकवादी कार्यकलाप पशु जीवन की सृष्टि करते हैं। मनुष्य जीवन में वर्ण तथा आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य को अंततोगत्वा संन्यास स्वीकार करना चाहिए क्योंकि संन्यास आश्रम में ही मनुष्य ब्रह्म सुख अर्थात दिव्य आनंद में स्थित हो सकता है। ब्रह्म सुख में मनुष्य कामेच्छाओं से आकृष्ट नहीं होता। जब कोई मैथुन की कामेच्छा से विचलित रहता है विचलित नहीं होता तो वह सन्यासी बनने हेतु उपयुक्त है अन्यथा उसे सन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपरिपक्व अवस्था में सन्यास ग्रहण कर ले तो यह संभावना बनी रहती है कि वह स्त्रियों से तथा कामेच्छाओं से आकर्षित हो जाए और पुनः तथाकथित गृहस्थ अथवा स्त्रियों का शिकार बन जाए। ऐसे व्यक्ति अत्यंत निर्लज्ज होता है और वांताशी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही वमन के हुए को फिर खाता है वह निश्चय ही निंदनीय जीवन बिताता है। अतएव हमारे कृष्ण भानामृत आंदोलन में यह सलाह दी जाती है कि सन्यासी तथा ब्रह्मचारी स्त्री संग से पूर्णतया दूर रहे जिससे कि कामेच्छाओं का शिकार होकर पतित होने की संभावना न रह जाए। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम उपस्थित भक्तों के चरणों में मैं अपना सादर प्रणाम कर रहा हूँ और साथ ही साथ कृष्ण बलराम मंदिर के अध्यक्ष और अन्य भक्तों ने जो मुझे इस सेवा दिया है श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन कर रहा तो उनके लिए भी मेरा नम्र प्रणाम। और खास करके मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि कल मेरा भगवद गीता क्लास था जो आ नहीं पाया मैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। आप वैष्णव है, आप कृपालु है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हमने सुन लिया श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कर रहे, बहुत ही कठिन शब्दों के द्वारा वे हमें चेतावनी दे रहे हैं खास करके सन्यासी और ब्रह्मचारी उनके लिए है। तो इस तात्पर्य के ऊपर प्रवचन करना मेरे लिए तो संभव है क्योंकि बहुत ही विवादात्मक ऐसा एक विषय यहाँ पर है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी तरह पता चल जाता है कि किस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी को किस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते ही हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तत् विद्धिकर्तारम् अव्ययम्। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये चार आश्रम चार वर्ण स्वयं भगवान के द्वारा दिया हुआ है और केवल हमारे ही कल्याण के लिए। अर्थात जो भी जीव हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम लौट जाए उनके पास और उनके साथ आनंदित रहे हमेशा के लिए। तो उसके लिए ये चतुर्वर्ण और चतुर आश्रम ये भगवान का दिया हुआ एक विशेष हमारे लिए एक योजना है। तो इस योजना के इस योजनाओं को हम बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में जब हम उतारते हैं तो जीवन परिपूर्ण हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अन्यथा क्या होगा तो उसके बारे में तात्पर्य में बहुत कठिन शब्दों से हमें चेतावनी दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे विवादात्मक जब तात्पर्य आ जाते हैं तो उनके ऊपर प्रवचन करना बहुत ही कठिन, मेरे लिए तो कम से कम कठिन हो जाता है। उस समय मैं जनरली एक महान ऐसे वैष्णव के चरित्र के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी 1971 में भारत आ गए, पूरे पाश्चात्य राष्ट्र घूमकर वहाँ पर कई मंदिरों को स्थापना करके कई शिष्यों को दीक्षा देकर वे जब पहली बार भारत लौटते हैं तो पहली बार वो बम्बई में आए। वहाँ पर वे कार्यक्रम के बड़े बड़े सत्संग के जिसमें 40,000 लोग आते थे उस समय, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है भारत का, वहाँ पर एक विशेष इस्कॉन मंदिर होना चाहिए। इसलिए उनका योजना ये था कि वे जुहू में एक मंदिर बनाना चाहते थे। उस समय जुहू एकदम जंगल जैसा समझ लीजिए आप, उस समय जो हम आजकल बम्बई देखते हैं उसके विपरीत एक जंगल जैसा था। तो जब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पर ऐसा एक मंदिर होना चाहिए, भक्तों को अजीब लगने लगा, रही इस जंगल में क्यों ना आएगा श्रील प्रभुपाद जी, तो हमें तो डाउनटाउन मुंबई में साउथ मुंबई में कहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, यहाँ हमारा मंदिर होना चाहिए। तो भक्त लोग ने बोला ठीक है फिर। तो उसके लिए एक छोटा सा शेड जैसे बनकर वहाँ रहने लगे। बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा पाश्चात्य राष्ट्र के भक्तों को, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के निर्देशन में वे सेवा कर रहे थे। तो खास करके परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज और अन्य भक्त प्रभुपाद जी के सेवा में उस समय वहाँ पर थे। तो गिरिराज स्वामी महाराज को हर दिन साउथ मुंबई आना पड़ता था जुहू से, ट्रेन में आते थे उस समय। खैर उस समय इतना भीड़ नहीं हुआ करता था जो हम आज भीड़ देखते हैं मुंबई में, लेकिन फिर भी उनको सेकंड क्लास ट्रेन ऐसा लोकल ट्रेन में चढ़ के आना पड़ता था। और साउथ मुंबई में मतलब जहाँ पर बीएमसी है बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर उनको वहाँ पर अधिकारियों से मिलना, उनसे परमिशन लेना, इस समय में इस प्रकार उनकी सेवा था। बहुत उसमें बिजी रहते थे। तो आते आते शाम हो जाता था मंदिर, तो उनको भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं हुआ करता था। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते ही थे कि हमें नित्यम भागवत सेवा, हर दिन भागवत सुनना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। उस समय भागवतम क्लास भी शायद नहीं होता था, तुरंत उनको सुबह जाना पड़ता था। तो श्रील प्रभुपाद जी के इस आदेश को पालन नहीं कर पाते थे, भागवत का अध्ययन करे बैठ कर चिंता में थे, ये सेवा भी महत्वपूर्ण है लेकिन मुझे भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा, क्या करूँ, इस प्रकार वो चिंता में थे। तो उन्होंने सोचा एक दिन श्रील प्रभुपाद जी को मैं पूछ ही लेता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे अपने कमरे में, तो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जाकर दरवाजा खटखटाए और श्री प्रभुपाद जी ने यस कमिंग, यस आइए अंदर। तो जैसे प्रभुपाद जी महाराज को देखे, उन्होंने कहने लगा नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्री प्रभुपाद जी ने श्लोक गाया, उन्होंने प्रश्न भी नहीं किया अभी तक, मतलब प्रभुपाद जी ने बिना प्रश्न पूछे उन्होंने जवाब दे दिया। प्रश्न क्या था इनका कि भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं है तो कैसे करें श्री प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने जवाब दे दिया। बाद में प्रभुपाद जी ने विवरण दिया, उन्होंने कहा देखिए इस समय आप मंदिर बनाने के लिए यहाँ पर मदद कर रहे हैं। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक पुस्तक भागवत और एक व्यक्ति भागवत। ओके, तो अभी आप व्यक्ति भागवत की सेवा कर रहे हैं तो भविष्य में आपको समय मिलेगा पुस्तक भागवत पढ़ने के लिए। अभी आप व्यक्ति भागवत के सेवा में नियुक्त हो जाए, लगे रहिए। इस प्रकार उन्होंने उनको कहा। तो ये सुनकर गिरिराज महाराज जी समझ गए हाँ मुझे अभी केवल और केवल प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करना, अर्थात मुझे भागवत पढ़ने के लिए अगर समय भी नहीं मिला तो भी कोई समस्या नहीं, भविष्य में मुझे समय मिल पाएगा। तो इस प्रकार वो निश्चिंत होकर प्रभुपाद जी को मदद किया। आज हम देखते हैं इतना विशाल, इतना भव्य दिव्य मंदिर वहाँ पर निर्मित हो गया है उसी समय, और बाकी भक्त सब मिलकर उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया। तो इस प्रकार दो प्रकार के भागवत जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दो महाभागवतों के बीच में चर्चा हो रहा है, एक है नारद मुनि जी और दूसरे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज के कुछ प्रश्नों को नारद मुनि जी उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, और आज खास करके ब्रह्मचर्य और सन्यासियों के बारे में, उनका जीवन के बारे में, उनका किस प्रकार उनके कार्यकलाप होना चाहिए, किस प्रकार उनको मतलब जो नहीं करना चाहिए उससे क्या होगा, इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छी तरह तात्पर्य में कह दिया है। तो मैं सोच रहा था कि व्यक्ति भागवत के बारे में आज चर्चा करेंगे। ऐसे एक व्यक्ति भागवत शायद आप कभी सुने नहीं होंगे, बहुत कुछ कम लोग सुने होंगे ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसे एक महान वैष्णवी श्री प्रभुपाद जी की शिष्या जिनका नाम है लादिनी देवी माता जी, सुना आपने किसी, श्रीमती लादिनी देवी माता जी, कुछ आप में से कुछ जानते हैं। श्रीमती लादिनी देवी माता जी अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में उनका जन्म हुआ, उत्तर अमेरिका। तो उनका पिक्चर आगे ये है माता जी, लादिनी देवी माता जी दीक्षित नाम है। जब ये 1950 के आसपास उनका जन्म हुआ, डेट्रॉयट शहर में उनके माता पिता उनके साथ अपने एक भाई बहन के साथ छोटा सा ना सुंदर परिवार उनका था। स्कूल में जाते थे जिस प्रकार हर बच्चे जाते हैं, और उनके घर के सामने एक तालाब था और उसमें काफी मेंढक हुआ करते थे। वो मेंढक को उन्होंने एक नाम भी दिया था, उसको हरबी नाम के, हरबी इस प्रकार उसको नाम दिया था। और उनके घर में एक छोटा सा कुत्ता था, उसको पेपर डूडल उन्होंने नाम दिया था। छोटी सी बच्ची लेकिन फिर भी इस प्रकार सब जीव जंतुओं से इतना प्रेम कर रही है। और जब एक बार पेपर डूडल कुत्ता कोई कारणवश मर गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया कुत्ते को, तो कुत्ता मर गया अपघात में, तो इतने दुखी हो गई। उस समय उनका नाम था लिंडा, बाद में लादिनी देवी हो गई लिंडा, मिस लिंडा। बहुत ही दुखी होकर रोने लगी, इतना विलाप करने लगी, इतना विलाप करने लगी कि उनके माता पिताओं को बहुत कठिन हो गया कि उनको किस प्रकार सांत्वना दे। और इतने छोटी सी उम्र में उन्होंने एक सुंदर कविता भी लिखा, जो किताब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका नाम है लेगेसी ऑफ लव, अंग्रेजी में है, बहुत ही सुंदर किताब है, हो सके तो पढ़ लीजिए। तो उसमें उन्होंने कविता भी लिखा है, वो कुत्ते के लिए जो बिछड़ गया। इस प्रकार हम बचपन में देखते कि माता जी जीव जंतुओं के ऊपर कितना प्रेम करते थे, और मनुष्य और वैष्णव के लिए तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार छोटे शहर में उस रहने लगे उनके परिवार के साथ। तो जब वो युवावस्था पहुंच गई तो कॉलेज जाया करती थी। वहां पर एक उनके मित्र जिनका नाम माइकल रैन से मुलाकात हुआ, तो दोनों ने सोच लिया विवाह कर लेना चाहिए। दोनों का विवाह भी हो गया माता पिता के आशीर्वाद से, और डेट्रॉयट शहर में ही वह रहने लगे, और इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि माइकल डेट्रॉयट शहर में जब घूम रहे थे तो उनको एक किताब मिल गया, श्रील प्रभुपाद जी की किताब, छोटा किताब, ऑन द वे टू कृष्णा समथिंग लाइक दैट। किताब पढ़कर बहुत आकर्षित हो गए, उनको ये नए विचार, वैष्णव विचार पहले से मालूम नहीं था, वैष्णव सिद्धांत वगैरह पढ़कर बहुत ही उनको आकर्षित हो गए। और कुछ ही समय में, संडे था उस दिन, एक दिन रविवार के सुबह, भक्त लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम इस प्रकार कीर्तन करते हुए वो शहर में जा रहे थे सुबह का कीर्तन करते हुए। तो ये बहुत आकर्षित हो गए, भक्तों से जाकर मिले, बात किया, तो उन्होंने कहा, उनको एक फ्लायर दे दिया, एक हैंडबिल देकर उन्होंने कहा हमारे बगल में एक सेंटर है, इस्कॉन सेंटर, आप आइए वहाँ पर, हमारा इधर इस प्रकार भगवद गीता का प्रवचन सुनने के लिए आए। रविवार प्रीति भोज जो संडे फीस्ट कार्यक्रम में उनको उन्होंने निमंत्रण दिया। तो माइकल बहुत आकर्षित थे पहले से ही आध्यात्मिक जीवन में, तो वे गए मंदिर और गीता क्लास उन्होंने सुना, भक्तों से मिला और प्रसाद सेवन किया, बहुत उनको अच्छा लगा, और वापस घर आ गए और अपने पत्नी लिंडा को कहने लगे कि मेरा बहुत विशेष आज भक्तों से मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा, चलो हम अगली बार हम भी चलते हैं, दोनों चलते साथ पीछे। तो लेकिन लिंडा ने कहा नहीं 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 बिल्कुल मैं नहीं आऊँगी, और आपको भी कोई जाने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार उन्होंने उनको कह दिया। लेकिन फिर भी माइक ने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा। तो अगला संडे जाकर इस प्रकार वो मिले, मैं भक्तों से मिलते रहे, और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी एक बार आए वहाँ पर, तो दोनों जाकर मिले। मतलब उसके बाद में काफ़ी बार उनको कहने के बाद लिंडा भी बोली चाहिए चलो मैं भी आपको साथ देती हूँ, मैं भी आके देख लेती हूँ कौन है ये हरे कृष्ण भक्त, कौन है प्रभुपाद जी कौन है। तो पहली मुलाकात में उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रवचन सुने तो बहुत प्रभावित हो गए दोनों, खास करके लिंडा भी प्रभावित हो गए, और उस मंदिर के अध्यक्ष और उनके पत्नियों से उनको मुलाकात हुआ और वार्तालाप हुआ, और श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने इस प्रकार विनती की कि आप हमें आध्यात्मिक जीवन में निर्देशन दीजिए, हमें बताइए कैसे हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, तो आप इसी प्रकार सोला माला करते रहिए, चार नियम पालन करिए, सुबह शाम हो सके तो मंदिर आइए, और या फिर घर में तो कम से कम कीर्तन कीजिए। इस प्रकार उन्होंने उनको आदेश दिया, और कुछ समय में उनको दीक्षा भी हो गई। तो माइकल बन गए महानंद प्रभु, और लिंडा बन गई लादिनी देवी माता। तो इस प्रकार दीक्षित नवदीक्षित दोनों बहुत ही आदर्श गृहस्थ जीवन बिताने लगे डेट्रॉयट शहर में, अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लीलावती माताजी नाम के एक श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य थी, शिष्या, जो पूरे उत्तर अमेरिका के सब मंदिरों में हेड पुजारी थी। एक मंदिर के एक हेड पुजारी होते ना, लेकिन उस समय क्योंकि पुजारियों की संख्या कमी थी और इतने सारे मंदिर श्रील प्रभुपाद जी ने बनाए थे, तो वहाँ पर जाकर भक्तों को ट्रेनिंग देना किस प्रकार मूर्ति पूजा करना चाहिए भगवान का। तो उसके लिए लीलावती माता जी जाती थी अलग अलग शहरों में, तो उन्होंने कहा है कि आप भी चलो मेरे साथ वृंदा को। अर्थात माता जी खुशी खुशी उनके साथ चली गई। तो वो दोनों जाकर भक्तों को ट्रेनिंग देते थे और किस प्रकार भगवान का अर्चा विग्रह का पूजा होना चाहिए। इस प्रकार माता जी घूमने लगी। तो एक बार वे दोनों मिलकर, और माइकल भी थे उस समय, न्यू वृंदावन गए। वेस्ट वर्जीनिया में श्री प्रभुपाद जी ने एक कृषि क्षेत्र अर्थात फार्म हाउस बनाया है, मतलब भक्तों के मेहनत से वहाँ पर कुछ 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मिला। वहाँ पर प्रभुपाद जी जाते हैं, यहाँ पर कृषि और गोरक्षा होना चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पर भक्त लोग रहा करते थे। तो एक बार इन दोनों का वहाँ पर जाना हुआ और बहुत ही कठिन परिस्थिति में भक्त लोग वहाँ पर जीवन बिता रहे थे, क्योंकि इस्कॉन आज हम जो देखते हैं उस समय ऐसा नहीं था, अर्थात बहुत ही कम सुविधाएं थे। कहने का मतलब है इतना रिच नहीं थे, इतना श्रीमंत नहीं था इस्कॉन उस समय, लगता था कि बहुत गरीब संस्था है। तो भक्त लोग बहुत ही कठिन जीवन बिता रहे थे, तपस्या के जीवन। तो ये देखकर लादिनी देवी माता जी को बहुत विचलित हो गए, कैसे लोग इस प्रकार रह पा रहे हैं इतना कठिन परिस्थिति में। आके मंदिर के अध्यक्ष ने उनको विनती की कि आप यहीं पर आकर सेवा करना चाहेंगे, क्योंकि वैसे भी आप डीटी वर्षिप में अर्च विग्रह की सेवा में आप अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मूर्ति है, तो उस मूर्ति का पूजा करने के लिए एक पुजारी चाहिए, क्या आप आएंगे यहाँ पर रहकर उनका सेवा करेंगे, बड़े बड़े मूर्ति है। तो माता जी ने कह दिया ठीक है मैं आऊँगी, आकर वहाँ पर रहकर वो जीवन शैली बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबको सुनना और समझना उसमें क्या लिखा है। किताब में सब इस प्रकार लिखा है कि किस प्रकार माता जी वहाँ पर अपने साधना में कड़ी साधना करती थी। 2:30 बजे के आसपास उठ जाती थी माता जी और स्नान करने के लिए ना कोई उधर अटैच बाथरूम या ऐसा कुछ नहीं था, जंगल है, पूरा जंगल है समझ लीजिए, छोटा सा एक पुराना एक बिल्डिंग था वहाँ पर भक्त लोग रहते थे, वहीं पर जगन्नाथ मूर्ति थे, तो उनका पूजा के लिए रहते थे भक्त लोग एक बड़ा कमरे में, परंतु उनको स्नान करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, कम से कम एक 10-15 मिनट चलना पड़ता था। सुबह के समय जाकर वे एक एक छोटा सा एक घर जैसे उन्होंने बना था जहाँ पर बाथरूम, वहाँ पर पानी कुछ गर्म पानी का तो सुविधा है ही नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कह दिया कि बहुत ही तपस्या के जीवन बिता रहे थे। तो कहा जाता है कि वहाँ पर एक ड्रम रखा करते थे, ड्रम के अंदर पानी, लेकिन इतना ठंडी बर्फ बन जाता था पानी, और अब बर्फ ऊपर का लेयर बर्फ बन जाता है, तो बर्फ को तोड़ने के लिए उधर एक पत्थर रखा करता था, तो पत्थर उठाकर वो बर्फ को तोड़ना है, और उसके बाद में नीचे जो पानी है सोचिए वो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, तापमान, वो पानी में वो स्नान करेंगे और वापस आएंगे वहाँ पर जहाँ पर उनको भगवान की मूर्ति का पूजा करना, सुबह के समय याद रखिए, और ना उनके पास टॉर्च लाइट या कुछ नहीं, पिच डार्क है ना, टोटल अंधकार में जाकर उनको इस प्रकार सुबह की कार्यकलाप करके मंगलारती के लिए हाजिर हो जाता। मंगलारती वो खुद कर देते लेकिन उसके पहले 3 बजे के आसपास वो जपा शुरू कर देते थे, 3 बजे से 4:30 बजे तक 16 माला माता जी कर लेती थी या फिर जितना भी हो सकते थे। तो उसके बाद अर्थात मंगलारती के पहले ही माला, और उसके बाद माला करने के लिए समय ही नहीं, लेकिन सुबह दिन भर सेवा, अभी सुनेंगे तो पता चलेगा कितने वो बिजी थे सेवा में। तो माता जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्वयं आरती करती थी, जिसके लिए 25 मिनट लगता है ना, 25 मिनट लगता है, और 25 मिनट का आरती इधर हो रहा है तो उनको उससे पहले ही दूध उबालने के लिए रखना पड़ता था, क्योंकि राधा वृंदावन चंद्र और जगन्नाथ बलदेव के लिए संदेश बर्फी इत्यादि पेड़ा वगैरह बनाने के लिए। और आप पूछेंगे तो फिर गैस या कैसे कुछ था क्या? नहीं, कोई सुविधा नहीं। आप समझ सकते हैं कि कठिन जीवन है ने। तो पिछले ही शाम को या दिन में जाकर माता जी जो गिरे हुए डाली जो चुनकर लेकर आती थी और उसको उपयोग करती थी किसके लिए? जलाने के। और इस प्रकार एक छोटा सा बर्तन में उन्होंने दूध डाला और इधर चूल्हा जलाया और उधर जाकर आरती करने लगे। उधर आरती हो रही है और इधर इधर चूल्हा जल रहा है। जैसे आरती समाप्त होने के लिए आ जाता था तो माता जी का लक्ष्य इधर भी है उधर भी है और शंख बजाकर वो आकर देखती थी कि क्या हो रहा। तो उसके अंदर ऐसा दो चार रोटी शक्कर डाल देंगे, कोई मेजरमेंट नहीं, कुछ नहीं, समय ही नहीं। और बाद में नरसिंह आरती और उसके बाद में तुलसी पूजा, तब तक दूध उबल के वो रबड़ी जैसे बन जाता था। और थोड़ा समय के बाद वो पूरा घट होके उसको माता जी एक प्लेट जैसे में सब डालकर उसको बर्फी या फिर और इस प्रकार के वस्तु बनाते थे माता जी। और कहा जाता वो इतना स्वादिष्ट हुआ करता था, इतना स्वादिष्ट हुआ करता था। तो खास करके वहाँ के भक्त लोग उसको बहुत पसंद करते थे भगवान को अर्पण करने के बाद। और एक बार ऐसा हुआ कुछ लोग कुछ वहाँ के निवासी भक्त ब्रह्मचारी लोग उनको भी सीखना था ये कैसे इतना स्वादिष्ट महाप्रसाद कैसे बन पा रहा। तो उनको लगा वो उन्होंने अपना पेन पेपर लेकर आ गए, माता जी आप हमें सिखाएंगे, हमको भी इस प्रकार आप कैसे बन पाते हैं, इतना बना पाते इतना अच्छा प्रसाद भगवान के लिए, यानी भोग और खाने से हमको ऐसा लगता है कि अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। तो माता जी ने कह दिया बस वो मैं ऐसे उबालने के लिए रख देती हूँ और ऐसे दो चार मुट्ठी शक्कर डाल के चली जाती हूँ। वो देख के उनको देख के ये देख के उनको तो बहुत अजीब लगने लगा, अरे ऐसे कैसे संभव है, ऐसा तो हम भी नहीं करते, लेकिन ये ऐसे कैसे, इसमें इतना स्वादिष्ट गुण कैसे आ सकता है। तो वो समझ नहीं पाए। हाँ बाद में वो समझ पाए कि कोई साधारण भक्त नहीं है, बहुत ही प्रगत भक्त है। तो एक उदाहरण मात्र है उनका कॉन्शियसनेस, उनका चेतना क्या होगा। और इस प्रकार माता जी पूजा करेंगे और बहुत सारे विग्रहों का वे साथ में बहुत सारे विग्रह भी थे अलग भक्तों का, उन सब भक्तों का मूर्तियों का पोशाक और आभरण वगैरह पहनाना, बड़े जगन्नाथ का भी सेवा करना। और उसके बाद में 7:15 बजे के आसपास भक्त लोग आकर श्रृंगार आरती में भाग लेकर वो चले जाते थे कृषि करने के लिए, अर्थात खेती करने के लिए। और उसके बाद में माता जी मंगल भोग बनाएगी, एक भक्त का उनको मदद मिलता था, मंगल भोग बनाएंगे और उसके बाद में मंगल भोग ऑफरिंग करेंगे। और उसके बाद में तैयारी किसका आगे? राजभोग, बराबर राजभोग आरती के लिए तैयारी। राजभोग स्वयं बनाते थे और राजभोग में तो कम से कम 10-12 आइटम होना चाहिए, है ना। तो इतने सारे भोज्य पदार्थ भगवान के लिए बनाकर एक भक्त के मदद लेकर वे वापस 12:30 के आसपास राजभोग आरती के पहले ये सब नैवेद्य करेंगे भगवान को, भोग अर्पण करके आरती करेंगे। तो जो सोचे सुबह इतना जल्दी उठकर 16 माला करके आरती करके भगवान के लिए इतने सारे भोग बना के ऐसे करते रहे। और उसके बाद में बराबर 1 बजे के आसपास सब भक्त का वृंद वहाँ पर इकट्ठा हो जाता था किसके लिए? निश्चित महाप्रसाद ग्रहण करने के। माता जी स्वयं प्रसाद बनाकर ऑफरिंग करके भक्तों को बिठाकर अपने हाथों से परोस कर खिलाती थी। तो प्रसाद का आस्वादन करने के लिए न्यू वृंदावन के खेत में जो खेती करने वाले सब भक्त लोग आकर उनको प्रसाद का आस्वादन करते थे। और दोपहर का समय में अभी क्या करेंगे वो? अभी वे पोशाक बनाएंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के और आभरण बनाएंगे। पोशाक मतलब जो भी न्यूयॉर्क शहर में जो भी थोड़ा कपड़ा मिल जाता था चीप एंड बेस्ट वो खरीद कर लेकर आते थे, ये लोग वहीं पर बैठकर उसका सिलाई करके भगवान के लिए पोशाक बनाते थे, आभरण बनाते थे। और साथ साथ उनको लकड़ी चुनने के लिए भी जाना है, लकड़ी तोड़ने का सवाल नहीं है, जो भी गिरेगा ऊपर से ऐसे बहुत बड़ा जंगल है ना 500 एकड़ का जमीन, तो लकड़ी मिली जाता था वो लकड़ी लेकर आएंगे। इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा। सोचिए तो उसके बाद सुविधा मिलने लगे और जीवन थोड़ा उनके लिए समय मिलने लगा, फिर भी केवल एक 10 या 12 साल में 15 साल में उन्होंने श्रीमंत श्री प्रभुपाद जी की किताबों को कितना गहरी से उन्होंने पढ़ाई कर लिया और कितने बार, वो किताब में लिखा है 7 बार उन्होंने श्रीमद् भागवतम संपूर्ण में पढ़ लिया, 7 बार 7 times श्रीमद् भागवत का उन्होंने पूरा पढ़ लिया। और चैतन्य चरितामृत 5 बार पढ़ लिया उन्होंने, 5 बार चैतन्य चरितामृत, 7 बार श्रीमद् भागवतम और 3 बार वे श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ ले। सोचिए तो कैसे संभव हुआ। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ना, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर हमको पढ़ना ही है तो हम समय निकाल ही पाएंगे, निकाल हमको समय मिल ही जाएगा। और एकादशी के दिन वे ऑफकोर्स निर्जल करेंगे और साथ ही साथ पूरे 700 भगवद्गीता श्लोकों का वे पाठ करते थे। इस प्रकार उनका जीवन। तो इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा। कुछ ऐसे घटना घट गए न्यू वृंदावन में जिसकी वजह से उनको वहां रहना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि अभी क्या करें क्या करें। तो उस समय भक्त तीर्थ स्वामी महाराज परम पूज्य वे अफ्रीका से थे, उन्होंने कहा कि मैं तो अफ्रीका जा रहा हूँ, तो क्या आप आएंगे हमें वहाँ प्रचार करने के लिए, आप मदद कर पाएंगे। तो माता जी ने कह दिया ठीक है, ये अच्छी जगह है, क्योंकि भारत से जो भी बड़े बड़े सन्यासी लोग प्रचार करने के लिए तथाकथित लोग गए तो सीधा कहाँ गए, शिकागो, ऐसे जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर या लंदन जर्मनी जैसे शहरों में गए, कोई सोचता भी नहीं। आज भी मतलब इतना कोई मैं वेस्ट जाता हूँ तो मतलब कहाँ सोचेंगे वो, अमेरिका नहीं तो यूरोप जाएंगे, अफ्रीका में कोई जाने के लिए इच्छा नहीं करेगा। और उस समय तो और भी कठिन परिस्थिति। तो माता जी ने कहा मैं वहां जाऊंगी हाँ, क्योंकि वहां पर किसी को कृष्ण भक्ति अच्छी तरह वहां पर प्रचार नहीं हुआ। प्रभुपाद जी गए कुछ जगह पर जाकर उन्होंने प्रचार किया, परंतु वहां पर भक्तों का प्रचारक कौन का बहुत आवश्यकता था। तो माता जी ने कहा कि ठीक है मैं वहां पर जाकर आपको मदद करूंगी महाराज, तो महाराज के साथ वो चलेगी। वहां पर रहकर वे इस प्रकार प्रचार में मदद किया, खास करके बच्चों को वो स्कूल में जाकर उनका हरिनाम देना, प्रसाद बांटना, और साथ ही साथ वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, मतलब जो भी उस समय के जो राजकारणी, प्रिंस जॉनसन बोल के एक वहाँ पर एक आदमी था, वो एक्चुअली गुंडा, तो उधर कैसे जाते हैं प्रजा प्रभुत्व डेमोक्रेसी, एक पार्टी जो है वो पिछले टाइम पे गुंडा था, अभी कैसा तो वो चुनाव में जीत कर अभी वो कुर्सी में बैठ जाएंगे, अभी अपोजिट पार्टी कौन सा है, विरोधी पक्ष, जो पहले जो कुर्सी में बैठे थे वो विरोधी पक्ष होंगे, है कि नहीं, दो पक्ष तो होंगे। तो इस प्रकार का वहां पर प्रजा प्रभुत्व चलता था। तो इस बार जब वो प्रिंस जॉनसन जो कुर्सी से उतर रहा था तो मतलब ऐसा ही समझ लीजिए राक्षस के जैसे उनका जीवन, मारना काटना किसी का जान लेना उनके लिए पानी पीने के बराबर इस प्रकार। और वहाँ के जो जो सरकार और ये जॉनसन्स के बीच में बहुत बड़ा युद्ध जैसे ही हो रहा था, हर दिन लड़ाई का मारना काटना इस प्रकार। तो इसके बीच में कुछ भक्त लोग तो पहले से ही किसी न किसी प्रकार जानसंघ को मिलकर वे भगवत गीता दिया एक बार उनसे उनको कृष्ण भक्ति के बारे में उन्होंने समझाया भी, लेकिन फिर भी वो इतना जल्दी कैसे सुधर पाएगा वो आदमी, तो फिर भी वो इस प्रकार हत्या इसमें उन्होंने एक भक्त ने कह दिया हमको एक चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कह दिया चिट्ठी में आप इस प्रकार कैसे कर सकते हैं, आप इस प्रकार मनुष्य हत्या होगी ये असंभव है, आप सुधर जाइए वरना आपको नरक जाना पड़ेगा, इतना कठिन जैसा वैसा उन्होंने कह दिया तात्पर्य अरे हमारे वैष्णव सिद्धांत कर्म के नियम। और उसको जब वो चिट्ठी मिल गई वो पढ़कर इतना क्रोधित हो गया किसका ही जरूरत है मेरे को ऐसा कोई लेटर लिख पाएगा, तो तुरंत वो अपने टोली को लेकर मंदिर पहुंच गए। सुबह का समय वो इंदिरा एकादशी का सुबह का समय था, हाँ तो वहां पर पहुंच गया और सीधा उन्होंने सब भक्तों को बाहर खींचा निकाल दिया, उसको सामने से छोटा सा नदी वहां पर उनको लेकर गया और उन्होंने कह दिया कि अभी जिसने भी लेटर लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहां पर पांच प्रभु लोग थे और दो माता जी थे उस छोटे से मंदिर में, तो उन्होंने कह दिया कि मैं माता जी लोग आप निकल जाओ आपको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये पांच लोग जो प्रभु लोगों को मैं मारने वाला हूँ, गन लेकर आए थे उनका 10-15 उनके चेले भी थे। तो अभी लिंडा यानी लादिनी देवी माता जी और एक माता जी उनको अभी चांस है, उनको एक अवसर है वहां से चले जाने के, लेकिन वे वहां से हटे नहीं और वे उल्टा वो क्रोधित हो गए, आप ऐसे कैसे कर सकते, ये वैष्णव है इन्होंने एक लेटर लिख दिया तो क्या फर्क पड़ा, आप क्षमा कर दीजिए उनको जीवन आगे चलता रहेगा। तो उन्होंने हरगिज मैं माफ करने के लिए सवाल ही नहीं, तो इनको तो मैं माफ नहीं, तो बोले कि अगर आपको मारना है तो सबसे पहले मुझे माफ दो क्योंकि मैं अपने आंखों से वैष्णव निंदा वैष्णव अपराध देख भी नहीं सकता, तो क्या आप तैयार है, तो उन्होंने हाँ, तो उन्होंने बंदूक उठाया और सीने के अंदर उन्होंने गोली उतार दी, तो माता जी वहां पर इस प्रकार शरीर त्याग कर दिया। एक भक्त के लिए उन्होंने अपने जीवन बलिदान दे दिया। देखिए हम वैष्णव अपराध के बारे में सुनते हैं और समझते भी कितना ये महा अपराध है, अपने आप को वैष्णव समझने वाला है, 10 नामा अपराध और वैष्णव अपराधों से भी हमें बचना चाहिए, है ना। और एक वैष्णव मतलब अभी जब जान जान खतरे में है तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, ठीक है प्रभु मैं चाहता था मैं चाहती थी या हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ये सब करके दूसरा कोई होता तो निकल जाता, लेकिन माता जी वहीं पर खड़ी रही और उनके हाथ से उन्होंने बंदूक खींचा और तब तक उन्होंने कह दिया ठीक है आप निकलो, तो उनको उन्होंने मार दिया। तो ये है वैष्णव, हाँ तो एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने अपने जान दे दिया। तो बाद में पता चला कि इस प्रकार उनका देहांत हुआ तो भक्त लोग उनको बाद में अंत्यक्रिया वगैरह करा दिया। तो वो किताब में हमारे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज परम पूज्य जी वो लिखते हैं कि लिंडा ने लादिनी देवी माता जी का वैष्णव गुण कितने महान है, एक भक्त को बचाने के लिए खुद अपने उन्होंने बलिदान दे दिया और अव्यर्थ कालतम वो सब है ना जो भाव भक्ति में जो व्यक्ति रहते हैं सब लक्षण इनके जीवन में साफ साफ नजर आता था। तो ये कोई साधारण भक्ति इस प्रकार कर ही नहीं सकता, हम और आप शायद कम से कम मैं तो इस प्रकार सोच नहीं सकता, तो लेकिन यहाँ पर माता जी का इस प्रकार जीवन है। तो 9 बज गया तो एक छोटा सा वीडियो है मतलब कम से कम आप वो उनका एक्चुअल फोटोग्राफ देख लीजिए और किस प्रकार छोटा सा उन्होंने वीडियो बनाया है। लादिनी देवी माता जी वही तो मैंने कहा ना, ఆహ్లాదిని శ్రీమతి రాధారాణి, ఆహ్లాదిని లాదిని అర్థాత్ ఆహ్లాదిని, ఆహ్లాదిని దేవి దాసి, ఆహ్లాదిని దేవి మాతా. ఎస్ ప్రభు, ఆ వీడియో వీడియో సంభవం ఆడియో ఆడియోనే ఓకే బస్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆప్కో దేఖియే. ఏ జగన్నాథ్ జీ కా మూర్తి, ఏ మాతా జీ రెడ్ ఏ ఉంటే జగన్నాథ్ పూరా వీడియో ఆడియో నీ చల్ రా ఫోటో ఆడియో బాగా I found a project, it's not here available at least, but it should be available in Mayapur or Mumbai. I'll send it Amazon also, I think it is available, or else I'll send it from Mumbai. I am from Mumbai, I can send it to the Legacy of God. You can give your number, bro.
You've been coming in years.
Oh, you have been to there, so you know.
I
think. Oh, yeah. Okay, sum up. बीच में वो एडवर्टाइजमेंट आया, वो एनीवे
हरे कृष्णा.
हमने बम्बई में श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे पेंटिंग्स चित्रकला तो उसका प्रदर्शन हमने उधर किया मुंबई में मार्च महीने में इसी साल का। तो रामशरण प्रभु जी की कृपा से यहाँ पर भी वृंदावन में भी करने का योजना है। यहाँ पर राधे धाम आप जाते हैं, राधे धाम जो चैतन्य विहार में, तो वहाँ पर नीचे जो हॉल है इतना बड़ा हॉल है वहाँ पर सब श्रील प्रभुपाद जी के पेंटिंग्स रखा जाएगा 24 से लेकर 9 तारीख तक। इस महीने आज 1 तारीख है, इस महीने का 24 से लेकर अगला महीने आने कार्तिक का आखिरी दिन तक 15 दिन तक लगातार वहाँ पर पेंटिंग एग्जीबिशन आर्ट एग्जीबिशन रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ पेंटिंग मेरे द्वारा बने हुए हैं क्योंकि मैं थोड़ा चित्रकला इत्यादि मैं जानता हूँ। यहीं पर वृंदावन में मैं राधे धाम में हमारे प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं जिनका नाम है धृति देवी माता जी और राम अभिराम प्रभु, नाम आपने सुना होगा, ये लोग काफ़ी बार इधर आते हैं। राम अभिराम प्रभु अभी रिसेंटली वे गुजर गए, तो ये दोनों आकर यहाँ पर वृंदावन में इस प्रकार 3 हफ्ते के लिए वे पेंटिंग सिखाते थे चित्रकला, तो उसमें मैं भाग लिया 5 साल लगातार, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो वही ज्ञान को मैंने उपयोग करके प्रभुपाद के बहुत सारे पेंटिंग्स कराए, करीब 50 पेंटिंग है, बड़े बड़े साइज के पेंटिंग ऑयल पेंटिंग्स हैं, क्योंकि इस साल 125वां सालगिरह है श्री प्रभुपाद जी का आविर्भाव का, तो इस उपलक्ष्य में हमने मुंबई में भी किया, तो अभी वृंदावन में भी होगा। आप सब वहाँ पर आइए ज़रूर, आप सबको आमंत्रण मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप अपने बंधु मित्र और परिवार सब वैष्णव को सब लेकर आइए और उस चित्रकला को देखिए। और इसके साथ साथ मैंने एक किताब भी लिखा है इलस्ट्रेशंस एंड रिवेलेशंस, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसको भी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधनी देवी माता जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण। Yeah.